आज जो आप सबको नमस्ते, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं बड़े भाग्यशाली हैं। आज जब हम उस महान आत्मा के चरित्र के बारे में विचार करेंगे, शास्त्र कहता है जो अच्छी चीजों के बारे में सुनता है या सुनाता है, अच्छे लोगों के बारे में जो सुनता है और सुनाता है, दोनों ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। कल हम सबने जन्माष्टमी मनाई। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मदिन है। जैसे आप अपने जन्मदिन मनाते हैं, तो श्री कृष्ण का ये 5246th बर्थडे है, 5246वां जयंती है, और जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। देवियों सज्जनों, 3228 BCE से पहले मथुरा में एक बच्चा पैदा हुआ और आगे जाकर पूरे संसार में और पूरे इतिहास में उसने लोगों के सोच विचार समझ को बदलने में सहायता की। वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में तो जो चेंजेस लाए, पर आगे के मिलेनियम्स के लिए भी वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने जिन्होंने किसी पॉजिटिव वे में खुद को और सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। उसका परिणाम है दुनिया के ज्यादातर, पूरी इस प्लानेट के ज्यादातर कंटिनेंट में विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स कृष्ण कभी पूरे दुनिया में हर जगह कृष्ण का चरित्र मिलता था। आज भी इस बदलते हुए टाइम में भी अगर आप देखना चाहें, एशिया के साउथ ईस्ट देशों से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सेंट्रल एशिया के इजराइल, इजिप्ट, मिस्र वगैरह से लेकर ईस्टर्न यूरोप के रशियन कॉन्टिनेंट तक आपको कृष्ण के छाप आपको दिखाई देने लगेंगे। ऑल्दो टाइम बदल चुका है, वहां दूसरे तरह के सोच वाले लोग रहते हैं, दूसरे तरह की कल्चर आ चुकी है, उसके बावजूद भी कृष्ण वहां आज भी उतने ही लिविंग पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह के साइड में जाएं, वहां के बड़े बड़े चौराहे पर आपको स्टैच्यूज मिलेंगे, उसको वो पार्थ सारथी स्टैच्यू कहते हैं। पार्थ सारथी, जहां पार्थ मतलब अर्जुन और उनका सारथी चेरिएटर के रूप में कृष्ण बैठा होता है, और ये स्टैच्यू आपको मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, जो आज के डेट में हिंदू देश नहीं है, पर अभी भी वो उस सिविलाइजेशन से अपने आप को जोड़ के प्राउड फील करते हैं, उस सब जगह आपको कृष्ण का महत्व दिखने को मिलेगा। देवियों सज्जनों, जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं भाद्रपद मास, वर्षा ऋतु का आखिर, भारत में वर्षा ऋतु का ऑलमोस्ट एंड है, लास्ट मंथ श्रावण और भाद्रव, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कैसे हुआ मोस्ट ऑफ हम सब स्टोरी जानते हैं, उन स्टोरियों को मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। और बड़े होकर के जब बड़े हुए, मथुरा से वो गोप उनको लाया गया, क्योंकि कंस का दौरात्म्य था, गोप में बढ़े, उनकी जो शुरुआती इनिशिएशन संस्कार है गर्ग ऋषि ने किया, उपनयन संस्कार जो पहले जमाने में पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी था, जिसको हम कहते हैं सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन, नॉर्थ इंडिया में जनेऊ संस्कार कहते हैं, अलग अलग जगह व्रत संस्कार उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। गर्ग ऋषि से किया, उसके बाद गुरुकुल में सांदीपनी ऋषि के, आजकल वो अवंती नगरी के ऋषि थे, जो आजकल मध्य प्रदेश में उज्जैनी है, जो उज्जैनी शहर है वही अवंती नगरी कहलाती थी। मथुरा से वो वहां गुरुकुल में पढ़ने गए, जो कि वहां के उस समय के ट्रेडिशन था। और गुरुकुल में पढ़ने के बाद वो अपने अपने जीवन में आए। देवियों सज्जनों, कृष्ण का जो जीवन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर जो महान आत्मा होते हैं उनकी जीवनी हमारे आपके से बिल्कुल अलग होता है। हमारे आपसे अलग का मतलब, जो छोटी छोटी चीजों में जिंदगी भर कंप्लेन करता रहता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे दुख में, और इसीलिए शायद हम एवरेज लोग हैं। महान वो होते हैं जो बड़े से बड़े दुख में रहते हुए भी अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। कृष्ण कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? जेल में, जेल की कोठरी में पैदा हुए। और किस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए आपको पता है? अंधेरी रात को उनको ट्रांसफर किया गया जेल मथुरा से गोप तक जिंदा बचाने के लिए। उनके छह छह भाई बहनों को मार दिया गया, बलराम और कृष्ण दो भाई मुश्किल से बच सके, कितने मुश्किल में पैदा हुए। आपको पता है कृष्ण कैसे मरे? अनजान सुनसान जंगल में, बिल्कुल डिप्रेशन में परेशान कृष्ण को किसी हंटर ने तीर मार करके मार दिया। और अगर उनकी पूरी जीवनी आप कृष्ण की महाभारत में पढ़ेंगे तो हर वो सिंगल मोमेंट दूसरों के लिए जिया, और सारे जिसको आप कहते हैं जो बदनामी है, जो ह्यूमिलिएशन है, वो सब खुद पीते रहे। तो आज जो भी छोटा सा समय है, वो छोटे से समय में हम कुछ कुछ इंसिडेंट्स लेकर के कृष्ण की जीवनी को समझने की कोशिश करेंगे आज के शुभ दिन पर। पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं ब्रह्मचारी कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ब्रह्मचर्य। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहेंगे ये कहां से आप टॉपिक उठा रहे हो, ब्रह्मचारी से कृष्ण का क्या लेन देन है भाई? क्योंकि हम तो यही सुनते रहते हैं बाजार में, क्या कृष्ण कैसे गोपियों के साथ रासलीला करते थे, कितने लोगों के साथ चक्कर था, कितनी रानियां थी 16,000। हम तो यही सब सुन बढ़ के बड़े हुए हैं, हमें यही सुनाया गया, और हमारे बहुत सारे धर्माचार्य लोग भी इसी बात को कोट कर करके खुद की सारी खराब कार्य करते रहते हैं। कृष्ण महाभारत में एक इंसिडेंट आता है जब अश्वत्थामा, मोस्ट ऑफ महाभारत की लड़ाई खत्म होने पर है, कौरव मोस्टली मारे जा चुके हैं, अश्वत्थामा को चीफ ऑफ आर्मी बनाया जाता है कौरव के तरफ से सेनापति। वो एक दिन कृष्ण से मिलने आता है, उनको कृष्ण को सब रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी बड़े रेस्पेक्टफुली कृष्ण से बात की, पैर छू के अभिनंदन ग्रीटिंग करने के बाद कृष्ण से कहता है क्यों नहीं आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना वो जो आपकी वेपन है सुदर्शन चक्र दे देते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए आप दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण ये महाभारत का ये सौतिक पर्व का ये श्लोक है सौतिक, जो कि महाभारत के 10वां पर्व है, 12वें चैप्टर के 29वां और 30वां श्लोक है। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मचर्यम महत घोरम चरित्वा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वम अभ्येत्य यो मया तपसार्चितः समान व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम यो नवजायत सनत कुमार समतेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः। कहते देखो तुम्हारी इतना डेयरिंग कहां से आया कि कैसी हिम्मत हुई कि तुम मुझसे ये मांग रहे हो। मेरा जो सबसे प्यारा बेटा है प्रद्युम्न, उसने भी कभी हिम्मत नहीं की मुझसे ऐसी चीजें मांगने के लिए। और वो प्रद्युम्न कौन, कैसा मेरा बच्चा है? तो कृष्ण कहते हैं मेरी शादी के बाद रुक्मिणी के साथ हम दोनों ने 12 वर्ष तक, देवियों सज्जनों याद रखिए, शादी के बाद भी 12 वर्ष तक हिमालय में पति पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उसके बाद जो संतान हमारा हुआ प्रद्युम्न, उस प्रद्युम्न की भी कभी ऐसी साहस नहीं था कि वो मुझसे ये चक्र मांगे। कृष्ण अपने मुंह से कहते हैं शादी से पहले तो छोड़िए, शादी के बाद भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीते रहे। सिर्फ संतान पैदा करने के लिए जितना आवश्यक उतना हमने पति पत्नी का सुख लिया। ये बात इसीलिए बताना जरूरी है, हम लोग अपने इस भगवानों को किस तरह के क्या सुनते हैं और रियलिटी में क्या होता है। तो कृष्ण की ब्रह्मचर्य, खुद कृष्ण के मुंह में कहते हैं मैं शादी के बाद भी भाई ब्रह्मचारी रहा, मुझे ज्यादा बदनाम मत करो, ये गोपियों कहां कहां इमेजिनरी कैरेक्टर ला करके जोड़ जोड़ करके करते रहते हो। देवियों सज्जनों, महर्षि व्यास के महाभारत में कृष्ण का एक दूसरा रूप होता है योगेश्वर कृष्ण। जो लोग गीता पढ़ते हैं अंतिम श्लोक होता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। व्यास बार बार कहते हैं कृष्ण योगेश्वर है, योगियों में श्रेष्ठ है, वन ऑफ द बेस्ट योगी। योगी कौन है? जिसने अपने सेंसेस पर, माइंड पर कंट्रोल कर रखा है, रेगुलेट कर रखा है, तपस्वी है। अगर आप कृष्ण की जीवनी महाभारत में, अंडरलाइनिंग है, महाभारत में पढ़े, जो कि कृष्ण का एक्चुअल ऑथेंटिक इतिहास है, तो आप कृष्ण की जो योगेश्वरता को आपको देखने को मिलेगा। कोई इतना बड़ा योगी नहीं होता तो गीता जैसा इतना भव्य और शानदार ज्ञान आपके सामने नहीं रखता। वो जो आत्मा को जानने वाला व्यक्ति, जब तक वो सेल्फ रियलाइज्ड ना हो तब तक वो बातें वो नहीं बता सकता जो कृष्ण की गीता में आप देखते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, और अच्छी बातें बताने का दो तरीका होता है। या तो कोई आप उसको शास्त्र बताओ कि ये धर्म है ये अधर्म है, ये करना है ये नहीं करना, ये मानना ये नहीं मानना, आप डिक्टेट करके बताओ। दूसरी तरीका है कि बच्चे किसी की बायोग्राफी पढ़ें, जीवनी पढ़ें, किसी अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़ें और खुद इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो, क्या लाइफ जिए, कैसे जिए। दोनों का वैल्यू एक ही टाइप का होता है, एक थ्योरी होता है एक प्रैक्टिस होता है। जिसने वो थ्योरी को प्रैक्टिस किया होता है वो महात्मा होता है, उसे हम भगवान कहते हैं। अगर आप गीता पढ़ते हैं, गीता का वो हर वो छोटा सा छोटा शब्द भी को अगर आपको समझ में आता है, तो महाभारत में कृष्ण का चरित्र पढ़ेंगे उसमें आपको उनके कैरेक्टर में भी वही झलकेगा। आप कृष्ण की जीवनी पढ़ो महाभारत में, मैं बार बार रिपीट महाभारत करता हूं क्योंकि काफी सारे बाद के पुराणों ने कृष्ण को बदनाम किया है और प्रोपागंडा भी होता है। तो महाभारत में कृष्ण का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको कृष्ण के जीवन में दिखेगा। दो चार इंसिडेंट लेते हैं, वो व्यक्ति जिसने योग को जीवन में अपनाया, खुद कृष्ण गीता में कहते हैं योगी कौन है? दुखे स्वनुद्विग्नमना, सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरोच्यते। जो दुख में भी टूटता नहीं है, सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, हर वो सुख दुख अच्छा बुरा हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहता है, वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही ऋषि है। कृष्ण की डेफिनेशन में योग दूसरा बताया समत्वम योग उच्यते। जो हर वो परिस्थिति में अपोजिट परिस्थिति में भी अपने आप को एक जैसा बनाए रखा वो योगी है। तो जब आप कृष्ण के कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे महाभारत में, वो बचपन से लेकर के मृत्यु तक हर परिस्थिति में वो उनकी ये जो स्माइलिंग फेस है, इवन वो जो डिप्लोमेसी करते हैं लड़ाई के मैदान में, जब बड़े टेंस में सब दुनिया रहती है, तब भी वो अंदर से खुश और निर्लिप्त और डिटैच्ड होकर काम करते हैं। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे लिए इन चीजों का कोई यूज नहीं है, पर मैं क्यों करता हूं। अर्जुन जब पूछते हैं तो कृष्ण कहते हैं मैं क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा महाजनो ये न गतस्सपन्था, आम लोग उसी को फॉलो करते हैं जो बड़े लोग करते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। जो सोसाइटी में हायर लेवल पर होते हैं उनके लिए जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, उनको पता है कि क्या चीज का क्या कितना इंपॉर्टेंस है, उसके बावजूद भी वो संसार में आम लोगों को वो मैसेज देने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। जैसे योगियों के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पाने में ना छोड़ने में, दोनों से ऊपर है। पर मुझे काम इसीलिए करना पड़ता है, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बड़े लोग काम नहीं करते तो काम बुरी बात है, इसलिए काम वो भी छोड़ देंगे। उनको ये भी पता है कर्म का फल निश्चित है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और उन फलों को भी वो हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। कृष्ण की जीवनी आप देखेंगे महाभारत में, द डुअलिटी को वो बड़े इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डुअलिटी क्या है? सुख दुख, अच्छा बुरा, ठंड गर्मी, निंदा प्रशंसा। दुर्योधन गालियां देता है तब भी कृष्ण मुस्कुराते हुए बात करते हैं, विदुर पैरों में गिर के भक्तिभाव से ओटपोट होकर बात करता है तब भी कृष्ण उतने ही स्माइलिंग फेस से बात करते हैं। अंदर दोनों सिचुएशन में वो समान रूप धारण रखते हैं, इसी को कहते हैं कि द्वंद्व में भी डुअलिटी में भी एक जैसा बने रहना। लाइफ में कितने भी अच्छी चीजें घटे या कितने भी बुरी चीजें घटे, दोनों सिचुएशन में अपने आप को एक जैसा बनाए रखना योगी का लक्षण होता है, और उसकी कोशिश करते रहना हम सबके लिए अच्छी चीज है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे लाइफ में उतना ज्यादा बैलेंस्ड बना रहेगा, यही योगेश्वर कृष्ण अपने जीवन में भी अपनाते हैं। कृष्ण लाइफ को हमारे तरह चूज नहीं करते, ये वाला जो भी, क्योंकि हम चूज करते हैं इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। दुख तब होता है जब हमारा नेचर चूजिंग नेचर होता है, मुझे ये चाहिए। वंस यू डिसाइड दैट आई वांट दिस वन, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली दुख को बुला रखे हो, क्योंकि जब वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी होंगे, जब वो मिलेगा डेफिनेटली आप खुश होंगे, पर नहीं मिलेगा तो दुख होंगे, कम मिलेगा तब भी दुखी होंगे, खराब पड़ गया तब भी दुखी होंगे। दुख होने के हजारों एक्सक्यूजेस हम ढूंढ ही लेते हैं जब हम चूज करते हैं। और योगी कौन होता है? जो इससे ऊपर उड़ जाता है, जो मिले आज इट इज एक्सेप्ट करो, मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दुख है, वो दुख को भी उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करो, उतने ही स्ट्रांग नेचर के साथ एक्सेप्ट करो जितने सुख को एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण के जीवन में वही सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। वो अंदर से वायलेंट नहीं है, शांत हैं, योगी हैं, पर अगर युद्ध जरूरी है तो युद्ध करना है, क्योंकि किसी को बचाना है, पब्लिक को बचाना है, धर्म को बचाना है, युद्ध कभी कभी शांति के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। अमृत भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना जहर रखता है उन लोगों के लिए जो योगी होते हैं। इसीलिए कृष्ण का जितना भी आप पिक्चर देखते हैं, अब पिक्चर तो सब 100-200 साल से बने, 200-300 साल से पहले तो ना कोई ड्राइंग, जो पेंटिंग या ड्राइंग या प्रिंटिंग मशीन था नहीं, जिसमें आप जो जिसका कृष्ण के, राम के, जिसके भी आप फोटो देखते हैं, जरूरी नहीं कृष्ण और राम ऐसा ही हो, पर जो आर्टिस्ट हैं वो जो उनको स्टोरीज में मिला उसी तरह के फ्रेम को कोशिश करते हैं सामने लाने के लिए। अगर आप महाभारत में कृष्ण का चरित्र पढ़ें या जो आपके घर में जो फोटो लगे होंगे या बाजार में या कहीं भी आप देखते होंगे कृष्ण के फेस में, एक चीज बड़े कॉमन आपको देखेंगे, बचपन से ले तक बुढ़ापा तक उनके मुंह में हमेशा वो स्माइलिंग नेचर है। ये जो स्माइलिंग नेचर का क्या मतलब है हमारे लिए ये समझना मुश्किल, इसीलिए कि हमारे अंदर जो परसेप्शन बना है कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, गुणी है, योगी है, तपस्वी है, उसका सूखा हुआ मुंह होना चाहिए, बड़ा सीरियस नेचर का होना चाहिए। और इसी तरह के हमारी आदत बन चुकी है देख देख के, थोड़ा कोई ठहाका लगा के हंसे तो हम वैसे ही उसको बड़ा बैड मैनर समझ लेते हैं, क्योंकि नए नए कल्चर पैदा होता है और उसमें हम बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताते हैं। और जब कोई आर्टिफिशियल योगी ऋषि मुनि बनते हैं आर्टिफिशियल, वो फिर वो सिविल टर्म्स जो सोसाइटी में चलता है उसको अडॉप्ट करके दिखाते हैं कि मैं कितना जेन्युइन हूं। पर योगी या ऋषि या साधु का एक पहला नेचर होता है उसकी इनोसेंसी, और इनोसेंस नेचुरल होता है। अगर आपको बचपन से अभी तक कोई ज्ञानी गुणी व्यक्ति सीरियस दिखा, इसका मतलब अंदर से बहुत दुखी है, योग अभी हजम हुआ नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जब हर परिस्थिति में आप खुश रहने लग जाए अंदर से, तो फिर आप योग के सर्टन लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए कृष्ण को समझना मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह के हम बाजार में ऋषि साधु संन्यासियों को देखते हैं, कृष्ण में ऐसा नहीं दिखता। वो तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, बांसुरी बजाता है, ये कैसा योगी होगा? असली योगी तो यही होता है ना। जब गांधारी कृष्ण को अभिशाप देता है, देवियों सज्जनों, महाभारत की लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कौरव मारे जा चुके हैं, और गांधारी को ये कन्विंस, गांधारी कन्विंस्ड है कि अगर कृष्ण चाहते तो मेरे बच्चे नहीं मारे जाते, और मेरे बच्चों के मारने के पीछे कृष्ण का हाथ ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण ने ही पांडवों को सपोर्ट किया। तो गुस्से में भरा हुआ था कृष्ण, गांधारी के पास पहुंचते हैं पांडवों के साथ, प्रणाम करते हैं, क्योंकि कृष्ण बड़े शिष्टाचार से भरे हुए व्यक्ति है। प्रणाम करते हैं तो गांधारी उनको अभिशाप देती है, और क्या अभिशाप देती है कि तुम्हारे घर में भी जैसे मेरा कोई बच्चा जिंदा नहीं रहा, मेरा खानदान खत्म हो गया, तेरे खानदान में भी कोई नहीं बचेगा, तुम्हारे बच्चे, पोते, नाती कोई नहीं बचेगा, और तू भी वैसे ही बिना बच्चे, बिना पोते, बिना परिवार के अकेला कहीं मरा पड़ा मिलेगा। अगर हमें कोई ऐसा अभिशाप दे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, हो सकता है दूसरा अभिशाप निकल जाए हमारे तरफ से, रिवेंज अभिशाप। आपको पता है कृष्ण ने क्या किया, मुस्कुराए, बोले वैसा ही होने दो, लेट इट बी। ये आप सोचिए कोई आम आदमी बोल सकता है, ये जब वही जो उस आत्मा को पी चुका होता है, जान चुका होता है, वो डुअलिटी से ऊपर उठ चुका होता है, वही इस स्टेज पर पहुंचता है देवियों सज्जनों। इसीलिए कृष्ण आपको हर परिस्थिति में बांसुरी बजाते पिक्चर आप देखते हैं, आनंद का खुशी के माहौल में रहते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। हमारे से नहीं होता है कि सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखो, लुक एट एवरी सिंगल थिंग एंड बीइंग विथ ए फ्रेंडली आई। पशु पक्षियों को भी, जिनको हमारे में से बहुत खाते हैं, पशु भाव से मित्र भाव से देखो, प्रेम भाव से देखो। हम तो अपने रिश्तेदारों में भी प्रेम भाव नहीं ला पाते हैं, मित्र भाव, जिनके साथ रहते हैं, काम करते हैं, रोज मिलते हैं। पर मंत्र कहता है ऋग्वेद का, ये हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो शक्ति दे कि सबको हम मित्र भाव से देखें, फ्रेंडली रहें। पर अगर आप कृष्ण का चरित्र देखें, कोई शत्रु नाम लीजिए, वो कंस हो, जरासंध हो, शिशुपाल हो, दुर्योधन हो, नाम लेते जाइए, किसी के साथ उन्होंने बदतमीजी नहीं की। दुर्योधन, जिसको दुर्योधन को पता है कृष्ण का इस तरह का नेचर, महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन कृष्ण के पास आता है सहायता, फेवर मांगने के लिए, क्योंकि सबको पता है उस समय सबसे कोई ताकतवर व्यक्ति था, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पावरफुल वो कृष्ण थे। मांगने आता है कि तुम्हारी जितनी आर्मी है द्वारिका में, वो सारी की सारी आर्मी हमारे हेल्प में दे दो। अर्जुन भी पहुंच जाता है, कृष्ण का मित्र है अर्जुन, और दुर्योधन कृष्ण को शत्रु मानता है। पर इसके बावजूद भी कृष्ण ने कहा, जो जैसा मांगेगा मैं वैसा हेल्प करने को तैयार हूं, जो मुझे पहले मांग लेगा जो, मैं उसी को दे दूंगा। दोनों पहुंचे कृष्ण के पास मांगने के लिए, कृष्ण लेटे हुए थे, दुर्योधन को पता था कि कृष्ण ने कह रखा है जो पहले आएगा जो मांगेगा मैं उसको वही दे दूंगा। दुर्योधन पैर के पास बैठ गया, दो भाव थे, पैर के पास बैठूंगा कृष्ण को लगेगा बड़ा भाई सबोर्डिनेट है, और उठते ही सीधा नजर मेरे ऊपर पड़ेगा। अर्जुन लेट आया तो सर के पास बैठ गया, कृष्ण उठे तो दुर्योधन को ही देखा, बोले क्या भाई क्यों आए, ना आपके हेल्प लेने आए हैं, लड़ाई होगी, आपकी मदद की जरूरत है, क्या चाहिए? बोले देखो कृष्ण ने पहले बता दिया था कि देखो लड़ाई तो मुझे करना नहीं है, मैं खुद कभी नहीं लड़ाई करने वाला हूं, अगर किसी के साथ जाऊंगा भी सिर्फ एडवाइजर के रूप में जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो आजकल बोलते ना NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वही पोस्ट लूंगा, खुद कभी वो पकड़ूंगा नहीं कुछ, आर्मी चीफ वाला नहीं। तो दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना दे दो सारी, कृष्ण के द्वापर में, द्वारिका में बहुत बड़ी सेना थी लाखों की। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना दे दो, कृष्ण ने कहा ले जाओ। अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या चाहिए, और तो कुछ बचा नहीं ना, आप ही मेरे साथ हो जाओ, थोड़ा बहुत गाइड कर देना। शत्रु और मित्र सबके लिए बराबर भाव रखने वाले कृष्ण, जीवन भर सुख में दुख में खुश रहने वाले कृष्ण थे। देवियो सज्जनों, और एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर नया राज्य बनाया था इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर से अलग, महाभारत युद्ध से बहुत पहले। और उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया राजसूय यज्ञ में। यज्ञ करते समय दो चार चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जब भी आप कोई बड़े यज्ञ करते हैं, घर में भी, बड़ा या छोटा। उसमें एक होता है कि आप लोगों को खाना भी खिलाएंगे, अन्नदान करेंगे। दान बहुत जरूरी होता है यज्ञ के, जब भी आप यज्ञ करें कोई ना कोई आप दान करना जरूरी है। नंबर टू था कि अग्र पूजा, उसको कहा जाता है संस्कृत में, शास्त्रों में। अग्र पूजा मतलब जो आपके, जिन लोगों को आप जानते हैं या समाज में, देश में, जो सबसे आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे एडोरेबल है, रेस्पेक्टेबल है, उसको आप फेलिसिटेट करते हैं। ये दो चीजें जरूरी होता है हर यज्ञ में। तो जब राजस्व यज्ञ में चर्चा चली तो हमारे में से कौन है जिसको हम अग्र पूजा के लिए चूज करें, फेलिसिटेट करें सबसे बड़े महान के रूप में। बहुत सारे ऑप्शंस आए, भीष्म है, द्रोण है, और भी व्यास है, पर सारे भीष्म, द्रोण, व्यास, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबने कृष्ण का नाम सुझाया। उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में, शक्ति में, यश में, कीर्ति में, योग में, साधना में, हर चीज में सबसे ऊंचे हैं। तो सबने मिलकर रिक्वेस्ट किया कृष्ण जी को कि आप अग्र पूजा के लिए हम आपको चुनते हैं और हम आपको अर्घ्य देंगे। अर्घ्य मतलब वो पानी से पैर धोते हैं और उनको रेस्पेक्ट करते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं, वस्त्र देते हैं, ये उसकी विधि होती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, अपने पुराने शैली में मुस्कुराते हुए बोला कि अगर इस यज्ञ में मेरे लिए कुछ आप काम दे सकते हैं तो मुझे एक काम दे दीजिए। जितने भी यहां अतिथि आए, ऋषि, मुनि, तपस्वी, छोटा बड़ा, उन सब की सत्कार करने का काम मुझे दे दीजिए ना। आजकल वो सत्कार वाला पार्ट तो घरों में भी अब नहीं रहा। वो पहले जमाने में घर में कोई मेहमान आता था तो उसके पैर धोते थे। आज कहीं कहीं गांव में है भारत में, पर अब शहरी कल्चर में नहीं रहा। पैर धोते थे, गमछा वगैरह देकर पैर पोंछ लेते थे, फिर चटाई बैठने की, फिर पानी पीने का देते थे। जब बड़े बड़े घरों में प्रोग्राम होता था तो लोगों को लगाया जाता था कि जो घर में आए उनके पैर धोया जाए। तो कृष्ण ने किया, वो ही वाला काम मुझे दे दीजिए, जो भी आएगा मैं उसका पैर धोऊंगा। देवियों सज्जनों, जो महात्मा होता है ना, जो महान होता है, सिर्फ वही इन कामों को दिल से कर सकता है। हमारे तो, हम तो कहीं इवन वॉलंटियरिंग भी करने जाते हैं, उसमें भी ढूंढते हैं यहां मेरे पोस्ट का कहीं कितना कम बहुत ना हो जाए मेरे इंसल का। तो कृष्ण जो ऋषि मुनियों के पैर धोने का काम चुनते हैं। कृष्ण और सुदामा की स्टोरी आपने सुनी होगी, मित्रता की स्टोरी। कभी और एक दिन आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज और कृष्ण के बारे में क्लारिफिकेशन के लिए बताना है। बहुत सारे लोग को ये मानना है कि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, या उन्होंने गीता में अर्जुन को भड़काया युद्ध करने के लिए। अगर आप गीता ठीक से पढ़े, पहला चैप्टर, प्रथम अध्याय, या महाभारत ठीक से पढ़े तो समझ में आएगी ये प्रोपागंडा है। कृष्ण पूरे शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ कोशिश करते रहे, किसी भी तरह कंप्रोमाइज हो, लड़ाई ना हो। लड़ाई किसी के भलाई के लिए नहीं है। इवन वो खुद दूत बन के, दूत समझते, मैसेंजर बन के गए, जो कि कोई दूसरा छोटा सा आदमी भी कर सकता था। खुद गए समझाने के लिए, दुर्योधन को, युधिष्ठिर को, पांडवों को, भीष्म को, सबको घर घर घूम के। दुर्योधन को तो ऐसा दूत बन के गए तो दुर्योधन ने तो उनको जेल में भी डाल दिया, बड़ी बड़ी गालियां भी देने लगे, तब भी वो सब किया युद्ध ना हो। पांडवों को इसके लिए भी राजी कर दिया, भाई राज्य ना मिला कोई बात नहीं, पांच गांव मिल जाए एक एक भाई लेकर रह जाना, मैं दुर्योधन को बता दूंगा। वो भी नहीं, चलो पांच गांव ने दो, पांच घर दे दो जहां वो अपना समझ के रहे, राजपुत्र हैं उनका हक बनता है। युद्ध में भागीदार ना बने, कर्ण को भी समझाया, भाई देख तू कुंती का बेटा है तो इन लड़ाई में मत पड़। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी लड़ाई नहीं रुकी, और जब लड़ाई होती है कभी कभी लड़ाई ना करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर अगर सामने वाला जब आप पर लड़ाई करने के लिए विवश करता है तो फिर आप राजा होकर छोड़ के अगर भागें तो हिंसा के भी पापी आप ही होते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को वो मारता जाएगा। तो आपको दुष्टों को संहार करना भी जरूरी है। इसीलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है वंश, लड़ाई फिक्स हो गई, लड़ाई के मैदान में हो, सोल्जर हो, तो तुम्हारा काम है कि लड़ाई में लड़ो उसी भाव के साथ, डिटैचमेंट के साथ। अगर लड़ाई नहीं करनी थी तो पहले सोच लेता, पहले कर लेता कि भाई हम जंगल जा रहे हैं, सन्यासी बनने, हमें लड़ाई नहीं करनी, यहां सबको इकट्ठा करके अपने सैनिकों को मरवा के खुद भाग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। देवियों सज्जनों, कम समय में मैं कंक्लूड करते सारे, जहां जहां जिस राज्य में जो परेशानियां थी उनको फिक्स किया, जहां कंस को मारा मथुरा में तो खुद राजा नहीं बने, पब्लिक की डिमांड पर अग्रसेन को राजा बनाया, कंस के खुद के पिता को, जरासंध को मारा, जरासंध ने जिस जिस उसके बच्चे को वहां राजा बनाया, जिस जिस राजा राज्य में जहां जहां दुष्ट लोग थे जिन जिन को भी मारा या मरवाया, वहां 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 के जो भी योग्य राजा होने की जिनके लिए जिनको होना चाहिए उन सबको राजा बनाया, और गांधारी के अभिशाप जैसे आपने अभी सुना, वापस द्वारिका आए, द्वारिका में मार काट लग चुकी थी, अपने बच्चों में भाइयों में पूरे द्वारिका में शराब पी के नशा करके एक दूसरे को मार काट करके, कृष्ण ने खुद समझाया बुझाया, कुछ फायदा नहीं हुआ, निराश होकर के जंगल में किसी झाड़ी के नीचे 125 साल के उम्र में कृष्ण निराश होकर के किसी झाड़ी के नीचे पैर फैलाकर पड़े हुए थे जंगल में, और तभी किसी शिकारी ने वो झाड़ी की खड़खड़ आवाज सुन के उसको लगा कोई हिरण है, तो उसने बाण चलाया, तीर चलाया और कृष्ण के पैर में लगा, और वो इतना जहरीला तीर था तो कृष्ण को बहुत तड़प हुआ और उसी से उनकी मृत्यु हुई। पर मृत्यु के समय भी कृष्ण का चरित्र देखने लायक था। जब शिकारी कृष्ण के पास पहुंचता है कि ये हिरण नहीं इंसान है, कृष्ण तब भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो, खुश रहो, अपनी आशीर्वाद और क्षमा के साथ कृष्ण अपने प्राण को त्यागते हैं। देवियों सज्जनों, आज की इस जन्माष्टमी के पर्व जो आपने कल मनाया, कृष्ण के इस भव्य चरित्र को पढ़ें, पढ़ाएं, सुनें और दूसरों को सुनाएं, और अगर अपने जीवन में कुछ कृष्ण को उतार सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, पर उस कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, वो महान आत्मा हमारे ही इष्ट हैं, उस कृष्ण को हम प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्माष्टमी पर। ओम शांति।